ओम शांति। सभी हाथ को ऐसे ऐसे करिए, हाँ सर पे रखिए, सोचो सर ठंडा हो रहा है, ऐसे ऐसे करिए, चेहरे पे घुमाइए, चेहरा भी लाल हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बहने कहती है, कपड़े सफेद जेब है खाली, कपड़े सफेद जेब है खाली, पर चेहरे पे है रूहानी लाली, और हम बन रहे विश्व के माली, इसी खुशी में बजा दो एक बार ताली। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसे हम विचारों को मैनेज करें अच्छी तरह से, विचारों का महत्व समझे कि भल जेब खाली हो तो भी चेहरे पे रूहानी लाली हो, और वह संभव है, क्योंकि सारा खेल विचारों का है। विचारों का महत्व अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में 75,000 करोड़ कोशिकाएं हैं, कि उन सब पर एंटीना लगे हुए, टीवी के एंटीना होते हैं ना, ये प्रोग्राम भी कैसे जा रहा है सब तक कि एंटीना उसको कैच कर रहा है और वो टीवी में देख रहे हैं। तो ऐसे ही शरीर में भी प्रत्येक कोशिका पर एंटीना लगा हुआ है कि जो हमारे विचारों को कैच करता है। विचार पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगी, विचार थोड़ा भी नेगेटिव होगा तो शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट होगी। और विचार इतने पावरफुल है, कहते यहां तक कि आमतौर पर जो अब तक विज्ञान में हम सोच रहे थे कि शरीर पर विचार की कोई भी इफेक्ट होनी हो तो उसका माध्यम चाहिए, जैसे अलग अलग हमारी प्रणालियां बनी हैं कि उन प्रणालियों के द्वारा विचारों की असर शरीर के अंगों पर होती है। जैसे भी हार्ट पर होनी है तो आप टेंशन में आएंगे तो एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, वह सिस्टम एक्टिव होगी और हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। परंतु कुछ साल पहले डॉक्टरों ने देखा कि इतनी क्षमता है विचारों में कि ऐसे कोई सिस्टम का कनेक्शन न हो तो भी शरीर के अंगों पर असर हो सकती है। एक साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे थे तो उनको दिखाई दिया कि जो हमारी आते हैं उसमें से भी इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है। यही सोचा जाता है कि जो अग्नाशय की ग्रंथि है वो अग्नाशय की ग्रंथि इंसुलिन निर्माण करती है। तो जब ये डॉक्टर को इंसुलिन मिला हमारी आंतों में भी, तो उन्होंने सारा उसके ऊपर रिसर्च करके जर्नल में छपवाने के लिए भेजा, तो उसका जो लेख था वापस दे दिया गया कि शायद आप अपने टेस्ट ट्यूब को ठीक से धोते नहीं हो इसलिए तुमको आंतों में भी इंसुलिन मिला, यह असंभव है। परंतु वह डॉक्टर बड़े पक्के थे, उन्होंने पूरा पीछा किया इसका और सिद्ध करके दिखाया कि भले कोई भी संबंध नहीं है, दिमाग का और पेट का संबंध है, परंतु आमतौर पर वो इंसुलिन नहीं निर्माण कर सकता है, फिर भी वो इंसुलिन निर्माण कर रहा है। तो ये बात मैंने क्यों बताई कि शरीर में जबरदस्त शक्ति है, जो आप अगर विचार करो उस प्रकार के तो शरीर भी प्रतिक्रिया देगा। मन के विचारों का शरीर पर पावरफुल इफेक्ट हो सकता है। यूके में एक जर्नलिस्ट थे, उनके पिता को कैंसर हुआ, पेट का कैंसर, जो कहते बड़ा खतरनाक होता है। डॉक्टर ने भी बताया कि आप 5-6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे। एक दिन अस्पताल से चेकअप करा के वापस आए तो उन्होंने कहा, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि डॉक्टर गलत है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अभी 3-4 महीने ही जिंदा रहने वाले। तो उनके पुत्र ने पूछा, डैडी आपको कितना जीना है? उन्होंने कहा, देख मेरी और तेरी मां की उम्र एक जैसी है, तेरी मां से 1 साल ज्यादा जीऊंगा। और सचमुच उनकी मां का देहांत 91 ईयर में हुआ और वह 92 ईयर्स तक जिंदा रहे। तो यह विचारों की शक्ति है, सही रूप से हम विचारों का उपयोग करें बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे हम विचार करते हैं ना उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक बार अमेरिका में एम्बुलेंस की स्ट्राइक हो गई और देखा कि जब एम्बुलेंस की स्ट्राइक हो गई तो जो इमरजेंसी एडमिशंस होते थे अस्पतालों में वह भी 1 मास तक बहुत कम हो गए। क्यों? क्योंकि लोग सोचने लगे अभी एम्बुलेंस की स्ट्राइक है, बीमार होंगे तो क्या होगा, तो लोग बीमार ही नहीं हुए। ऐसा बार बार सोचते हैं तो इसके कारण स्वस्थ रहते हैं। और सचमुच कहते हैं हरेक विचार जो है मैग्नेट जैसे हैं, वह परिस्थिति को आकर्षित करते, आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे एक विचार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, मजाक मजाक में भी कुछ सोचो नहीं, मजाक में भी कुछ बोल देंगे, कुछ सोच लेंगे तो वैसा हो जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति को एवरेस्ट पर जाना था, परंतु उसने कहा कि मेरी क्या औकात है, मैं तो जा ही नहीं सकता हूं। फिर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बस एक बार वो विचार मन में अंदर चला गया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आई, कभी जा ही नहीं पाया। तो इसलिए विचारों को मैनेज करना सही से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आज हम सभी चर्चा करेंगे। आठ प्रकार के विचार है। हाँ, कोई कहेगा कि भी क्यों आठ प्रकार आपने बना दिए। मैंने क्यों आठ प्रकार बनाए, क्योंकि जितना ज्यादा होगा तो आप सही उसको समझ पाएंगे कि मेरे विचार कौन से आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो जिसको मैं कहता हूं जहरीले विचार, टॉक्सिक थॉट्स। हाँ, ये विचार सब सचमुच जहर जैसे है, शरीर में भी जहरीले तत्व निर्माण करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, इन सब से संबंधित जो विचार है वह सचमुच जहरीले विचार है, कि जो अनेक प्रकार के जहर है शरीर में, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, कोर्टिसोल और भी कई ऐसे तत्व है कि जो जहर का काम करते हैं, वह सब इसके दौरान रिलीज होते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसको तो 100% जीरो बना दो, किसी भी हालत में एक भी ऐसा विचार रहा तो मुझे बहुत बड़ी हानि होगी। देखो, कोई आपको कहे एक दो बूंद जहर पियो तो पियेंगे। आज देखिए ना, ट्रेन में भी आपको कोई देता है कि भी पियो, तो हम नहीं पीते ना, कि शायद उसमें कोई नींद की गोली होगी तो कोई ऐसी जहरीली दवा होगी, मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो हम किसी से भी अनजाने व्यक्ति से कुछ भी नहीं लेते। तो ऐसे ही सोचो कि भी थोड़ा भी नफरत की थोड़ी भी भावना है तो मुझे बोल, उसका आपको कारण भी मिले कि ये तो नफरत करने के योग्य ही है, इसने मुझे बहुत सताया है, तो भी ये विचार करो कि मैं नफरत नहीं करनी। अपने आप को समझाओ, फोर्स भी करो, परंतु जहरीले विचारों से 100% मुक्त होना है, क्योंकि वह दिमाग पर भी बुरा असर डालते हैं। कॉर्टिसोल जो है वो ब्रेन को भी डैमेज करता है, और क्योंकि ये ब्रेन को भी डैमेज करता है, इसके कारण पूरी तरह से इससे मुझे मुक्त होना है। दूसरे अब है नेगेटिव विचार। हाँ, क्यों दोनों को अलग किया, कहीं दोनों को मिला देते, परंतु मैंने अलग इसलिए किया है कि भी नेगेटिव विचार बल कम हानि करते हैं, कि आप समझेंगे टॉक्सिक थॉट्स बहुत डेंजरस है, ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे छोड़ने का। नेगेटिव थॉट को भी छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट की भी नेगेटिव इफेक्ट होती है बॉडी के ऊपर। और नेगेटिव थॉट क्या है, डिसएडवांटेज के विचार है, असफलता के भी विचार है। शुरू में जो थॉट का महत्व बताया, आप कहेंगे ना कि मैं एग्जाम में पास नहीं हो सकूंगा, तो कभी भी पास नहीं हो सकेंगे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी हमारी एक क्रिकेट की मैच थी, जो बड़ी कक्षा के स्टूडेंट थे ना उनके साथ मैच थी। हमारे प्रिंसिपल ने पूछा तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है, तो बड़े बड़े हैं, एक्सपर्ट, हम जीत नहीं सकते। तो उसने कहा कभी भी नहीं जीतोगे, पहले ही तुमने सोच लिया कि भी नहीं जीत सकते तो कभी भी नहीं जीत सकते। तो ऐसे सदैव सफलता के बारे में सोचो कि मुझे सफलता मिलनी ही है, फिर भल कभी स्वीकार भी करना पड़े, परंतु एक बार तो पूरा सफलता के विचार करो, स्वास्थ्य के विचार करो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, ये नहीं कि बीमार हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये मैं सफल होने ही वाला हूं। ये पक्का करेंगे कि सफलता मिलनी ही मिलनी है तो 90% तो मिल जाएगी, और कोई भी डिसएडवांटेज के विचार नहीं करो। कि ये नुकसान होगा, ऐसा होगा। इसीलिए कहा गया है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। आशा सबसे अच्छे की रखो, परंतु मानसिक तैयारी रखो कि वर्स्ट भी हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो इसी बातों से ज्ञान की और भी अच्छी अच्छी बातें अगर आप समझेंगे, राजयोग सेंटर पर रोज प्रवचन होते हैं, कुछ मुरली कहते हैं, कहा भी गया ना कि विज्ञान की मुरली श्री कृष्ण बजाते थे, गोपियां उस पर पागल हो जाती थी, सुदबुद्ध खो देती थी। तो यह भी मुरली है कि जिसको अगर हम अच्छी तरह से समझे उस ज्ञान की बातों को, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, नेगेटिव थॉट्स को खत्म कैसे हम करें, निराशा, ईर्षा, द्वेष, नफरत की बात, इन सब बातों को कैसे हम खत्म करें। देखो शुरू शुरू में जब मैंने ये ज्ञान लिया और इन बातों को सुनने लगा, तो एक दिन एक बहुत अच्छी बात सामने आई। हाँ सिंपल सी बात है, लेकिन वो सारे जीवन भर उसने मदद की। एक बार वह आध्यात्मिक चर्चा में आया कि बदला न लो, बदल करके दिखाओ। बहुत अच्छा लगा, देखो तब बदला लेने के विचार भी आ रहे थे, तो सोचा कि बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखाना है। तो ऐसे ज्ञान की बातों से नेगेटिव थॉट पर विजय प्राप्त करो। फिर तीसरा है वेस्ट थॉट्स, ये भी फर्क है। नेगेटिव और वेस्ट में क्या फर्क है कि वेस्ट थॉट से शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होता है, कोई भी बुरा असर नहीं होता है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है आपका, और समय बहुत बड़ी संपत्ति है। कहते हैं समय इतनी बड़ी संपत्ति है कि जिसको आपके ससुर भी आपको दहेज में नहीं दे सकते। समय ऐसी संपत्ति है कि जिसको भगवान भी एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो एक दिन 24 घंटे का ही है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 24 घंटे का है, भिखारी के लिए भी 24 घंटे का, उसको हम 26 या 27 घंटे का नहीं बना सकते हैं। तो उसी में से हमें अपने आप को मैनेज करना, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट थॉट को फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। वेस्ट थॉट्स को समाप्त करने या कम करने के लिए हमें यह ढूंढना होगा कि कहां कहां हमारे विचार वेस्ट हो रहे हैं। कुछ एक उदाहरण देता हूं कि हम ट्रेन में या बस में जा रहे हैं, देखो कहीं एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, तो हम क्या करते, बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। हाँ बंबई में देखा भी है कि लोग बोरीवली से चर्चगेट जाते हैं, तो कहते हैं कि एक व्यक्ति एवरेज एक ही एड को 20 बार 25 बार पढ़ता है, तो वह आपको कोई फायदा नहीं, कंपनी वाले को फायदा है, जो चीज को आप खरीदेंगे, परंतु आपको कोई फायदा नहीं। तो इसलिए देखिए कि ऐसे कहां मेरे विचार वेस्ट हो रहे हैं। बाजू वाले को भी हम कई बार देखते हैं, ये क्यों फास्ट गाड़ी चला रहा है, आपको सोच के फायदा नहीं है, नुकसान तो उसको होगा और आपका थॉट तो वेस्ट हुआ। वाणी तो वेस्ट होती है, लेकिन विचार भी हमारे कई बार वेस्ट होते हैं। तो ये वेस्ट थॉट को पहचानिए। और सिंपल बात क्या करनी चाहिए आपके, चलो ये तो ठीक है बोलने में, परंतु टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपके पास कोई काम लिखे हुए होंगे कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। हाँ, वो लिख करके रखो, बहुत अच्छा है। उसको कुछ हिस्सों में भी डिवाइड करो। एक सिंपल चीज तो यह है कि ऐसे काम की जो एकदम अर्जेंट है, दूसरे ऐसे काम की जो मीडियम अर्जेंसी है इसके अंदर, और तीसरे काम ऐसे कि भी जो हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हो जाए तो एक काम है आपको। अगर ये तीन हिस्सों में बांट के आपके पास एक छोटी सी भी डायरी हो, और कोई ऐसी चीजें भी अपने पास रखो जैसे पेन, पेपर, पोस्ट कार्ड, कोई भी ऐसी चीजें, ताकि जब भी आप फ्री है यहां वहां देखने के बदले तुरंत यू डायरी को निकालो और सोचो अभी इसमें से मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, अर्जेंट कर सकूं तो कर लूं, उसके लिए फ्यूचर प्रिपरेशन करना हो तो भी कर लूं, वो नहीं तो फिर जो सेकंड लेवल है, नहीं तो थर्ड लेवल का भी, बल छोटा छोटा काम है लेकिन हो जाए तो वो काम उतर गया मेरा, और सचमुच वो करिए। अभी आजकल तो मोबाइल भी है ना, तो फोन करके भी कोई काम आपका हो सकता है। तो ऐसे जो वेस्ट थॉट हमारे हैं उसको भी फुल स्टॉप लगाने, जितने कम करेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट है नेसेसरी थॉट्स। अभी काम के विचार तो करने ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो भले नेसेसरी थॉट्स भी करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें भी लक्ष्य यह रखो कि काम कर रहा हूं परंतु सोचता कम। अधिकतर हम लोग उल्टा करते हैं, आप करते हैं कम सोचते हैं ज्यादा, परंतु क्या करना चाहिए, सोचो कम और करो ज्यादा। तब भी अगर नहीं सोचो तो अच्छा है। स्नान कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, है तो उसी का एक तो आनंद ले। या सपोज कोई काम का फ्यूचर का प्लानिंग कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो उसी का पूरा पूरा आनंद लो। तो ऐसे नेसेसरी विचारों को भी कहेंगे कि कम से कम करो। नेक्स्ट है इसको कहते राइट थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, चलो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं भी कर सकते, संभव है अगर आप थोड़ी कोशिश करो पॉजिटिव भी सोच सकते, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, परंतु कम से कम राइट थिंकिंग तो जरूर करो। राइट थिंकिंग का क्या अर्थ है कि परिस्थिति जैसी है वैसी देखो। आज हम क्या करते हैं, परिस्थिति को विकृत रूप दे देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, या तो हम रस्सी का सांप बना देते हैं, ऐसे हम विकृत रूप ले देते हैं। इसके कारण समस्याएं जीवन में होती, हम दुखी होते हैं, जो थॉट एनर्जी है वह भी वेस्ट हो रही है। उसके बदले राइट थिंकिंग करो। कई अलग अलग प्रकार है कि राइट थिंकिंग कैसे करें, कुछ एक बातें आपके साथ आज शेयर करता हूं। एक तो है जिसको कहा मैग्नीफाइंग। पहले हम देखेंगे रॉन्ग थिंकिंग कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राइट क्या करना है। मैग्नीफाइंग क्या है कि राई का पहाड़ बनाना, ये छोटी सी समस्या है लेकिन उसको बहुत बड़ी बना देना। आज ही एक बहन मेरे साथ चर्चा कर रही थी, तो उसने कहा कि भी कल घर में गीजर ऑन रह गया, वो थोड़ी सी बीमार भी है, उसके पति ने आके कहा कि भी गीजर ऑन रह गया है, तो इतना रोने लगी कि 6 घंटे तक मैं रोती रही, अरे क्यों गलती से गीजर ऑन रह गया, और चलो ऑन रहेगा तो मेरे को क्यों सुना है, मैं तो बीमार हूं, मुझे सुना कि आप क्यों टोंट मारना चाहते हो, तो इससे 6 घंटे तक रोती रही। तो यह है मैग्नीफाइंग। उल्टा हम क्या करें, पहाड़ की राय बनाए, बहुत बड़ी समस्या को छोटी बनाओ, उल्टा नहीं कर। दूसरा है जिसको कहा गया है ऑल या नन अप्रोच, कि व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट में ही सोचता है, परंतु जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वह तो अलग अलग शेड्स है जीवन के अंदर। और एक है जिसको कहते जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कोई भी बात होती है ना तो हम संभावना को नहीं सोचते, सीधा जंप करते कि भी इसी के कारण ऐसा हुआ होगा। और एक रॉन्ग थिंकिंग का प्रकार है डिस्क्वालीफाइंग द गुड। कई बार अच्छी चीजें होती है जीवन में, लेकिन अच्छी को भी हम बुरे में कन्वर्ट कर देते हैं। एक महिला ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, तो सभी ने उस दिन उसकी प्रशंसा की कि तुम बड़ी सुंदर लगती हो, ये साड़ी बहुत अच्छी है, तो सबको कहती क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मेरी सास ने प्रेजेंट की थी, तो उसे अपनी सास पसंद नहीं थी, तो ये साड़ी तो अच्छी है, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। राइट थिंकिंग क्या होता, अगर यह सोचती कि चलो सास ने 99 खराब काम किए लेकिन एक तो अच्छा काम किया कि भी अच्छी साड़ी प्रेजेंट की, या तो ये भी सोच सकती है कि भी कोई पूछ रहा है साड़ी किसने दी, लोग तो यही कह रहे हैं ना कि भी अच्छी साड़ी है, तो मैं भी उसके लिए अच्छा फील करूं। तो देखो अच्छी बात को भी बुरे में कन्वर्ट कर दिया। और एक है जिसको कहते हैं वाई मी एटीट्यूड, कि मुझे ही यह क्यों हुआ। जो कई बार एक्सीडेंट होते हैं ना, तो तुरंत वो कहते मेरा ही क्यों एक्सीडेंट हुआ, औरों का नहीं हुआ। तो भला आपका एक्सीडेंट हो, लेकिन औरों के सामने और प्रॉब्लम आते हैं, अधिकतर हमको हमारा प्रॉब्लम बड़ा दिखाई देता है। और एक है जिसको कहा है फ्लाई मेंटालिटी, मक्खी होती है ना, देखो यहां मिठाई रखो और साइड में गंदगी रखो तो मक्खी कहां बैठेगी, गंदगी बैठेगी। तो इसे समझ लो, जीवन में भी मिठाई भी है और गंदगी भी है, अब हमारे पर है कि हमको कहां बैठना है। राइट थिंकिंग क्या है, वेल गंदगी है लेकिन मुझे मिठाई पर ही बैठना है ना, उसी का मुझे आनंद लेना है। और हर परिस्थिति में आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मेरा रॉन्ग थिंकिंग कहां हो रहा है। और एक रॉन्ग थिंकिंग है नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या, कि जबरदस्त कोई चीज को भूलने की आप कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण में के रूप में, हाँ आप सभी पूजा करते हैं ना, तो देखो आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाजू के रूम में टीवी चालू है, तो क्या होता है ना, वो टीवी का ही पूरा प्रोग्राम आपको सुनाई देता। राइट थिंकिंग क्या होता है, चलो अभी तो मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे उसी में खो जाने दो, पूजा का मुझे पूरा अभी फायदा लेना है। तो ऐसे हाँ, इन सब से अभी आप सोचो, देखो एक चार्ट बनाना चाहिए, सचमुच एक चार्ट लिखना चाहिए, जिस चार्ट में पहले तो ये लिखो कि भी आज क्या हुआ, समस्या है वह क्या आई, फिर ये लिखो कि भी आपको फीलिंग्स क्या आई वह समस्या के कारण, उदाहरण के रूप में किसने आपकी टीका कर दी तो आपको क्या फीलिंग आई, बहुत बुरा लगा, नफरत की भावना हुई। फिर तीसरी कॉलम में लिखो कि रॉन्ग थिंकिंग मैंने क्या किया, उसको मैग्निफाई किया, निर्णय जंपिंग टू कंक्लूजन किया, डिस्क्वालीफाइंग द गुड किया, ऑल और नन अप्रोच क्या किया, ये जो सारे सीखे मैंने क्या किया। और लास्ट कॉलम में लिखो भी राइट थिंकिंग क्या होता, चलो पास्ट इज पास्ट, हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं भविष्य में ऐसी परिस्थिति है तो राइट थिंकिंग क्या करूंगा, वो पक्का लिखो, सोचो भी। ऐसा आप एक मास भी करके देखो, एक मास में भी परिवर्तन आ जाएगा, जब ऐसी परिस्थिति आएगी ऑटोमेटिक आप राइट थिंकिंग क्या है वह याद आ जाएगा। तो लिखने का अभ्यास जरूर करना। इसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत कुछ कहा गया है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, परंतु उसका एसेंस क्या है कि एडवांटेज को ढूंढ निकालो, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें डिसएडवांटेज के बारे में नहीं सोचो, उसमें भी एडवांटेज को ढूंढ निकालो, और कैसी भी परिस्थिति आपको एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरा क्या अर्थ है राइट पॉजिटिव थिंकिंग का, कि बल कोई समस्या भी आए तो वह कमजोरी को शक्ति में रूपांतर कर दो, और ये सचमुच हो सकता है अगर आप ठीक से करो तो समस्या व शक्ति में भी कन्वर्ट हो सकती है। कहते हैं कि गिरना वह असफलता नहीं है, पहले 10 बार भी आप गिरो वह सफलता नहीं है, लेकिन गिरे रहना फिर से उठना नहीं वह असफलता। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग की पावरफुल प्रैक्टिस करो तो जबरदस्त उससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग से भी अच्छा है जिसको मैं कहता हूं एलिवेटेड थॉट्स। पॉजिटिव थॉट तो कहेंगे कि सफलता के विचार है, स्वास्थ्य के विचार है, एडवांटेज के विचार है, परंतु एलिवेटेड थॉट्स उससे भी ऊपर है कि जो हमारी स्थिति को एलिवेट करते हैं। जैसे कि आप ऊपर जाकर के बलून में ऊपर गए और फिर आप नीचे के मकान देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे, छोटे छोटे दिखाई देंगे। हाँ, कोई पहाड़ी होगी, पहले तो पहाड़ी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन ऊपर जाके देखो तो छोटी सी दिखाई देगी। तो ऐसी पहाड़ जैसी भी समस्या हो, अगर आप एलिवेटेड थॉट्स करते हैं तो वह समस्या छोटी दिखाई देती है। और एलिवेटेड थॉट्स क्या है, वह हमारे सेल्फ के विचार है, जिसको कहेंगे कि जो हमारी कोर एनर्जी है, मूल शक्ति जो हमारे में है, उस मूल शक्ति के विचार वह एलिवेटेड थॉट्स है। आध्यात्मिकता के विचार वह एलिवेटेड थॉट्स है। तो सचमुच इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके मैं मेरे में जो दिव्य चेतना है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसके बारे में हम सोचूं। वेने डायर बहुत ही अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी उन्होंने लिखी है। वह कहते हैं कि आमतौर पर हम सोचते हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, और कभी कभी मुझे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं और कुछ करते हैं तो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। उनका सत्य क्या है कि वास्तव में यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, ओकेजनली यू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो यह स्टेज बननी चाहिए कि ज्यादा समय यह रहे कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूं, कभी कभार भले ह्यूमन एक्सपीरियंस भी हो। और दूसरा एलिवेटेड थॉट क्या है, परमात्मा से संबंधित विचार। और परमात्मा के विचार क्यों करने चाहिए, क्योंकि एक बात तो यह है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे मरीज है कि जिनको एकदम ऐसी बीमारी हुई थी, सभी ने आशाएं खो दी थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि भी ये 5-10 दिन का ही मेहमान है या 2 घंटे का ही मेहमान है, परंतु ऐसे पेशेंट भी एकदम स्वस्थ हो जाते, पता नहीं कैसे हुआ। हाल ही में मैं सूरत में गया था तो एक नर्स बहन ने अनुभव सुना है, बड़ा मुझे भी प्रेरणा मिली। हाँ, उनकी माँ बहुत ही बीमार थी, हाँ एकदम बीमार थी, उनको टकियोस्टोम, गले में भी वो ट्यूब डाल करके सांस ले सके ऐसा करते थे, और एकदम आशा खो दी थी। एक बार तो डॉक्टर ने कहा भी कि भी अभी कोई भी संभावना नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। फिर भी वो बहन नर्स थी तो उसको पता था कि भी फिर से एक बार शायद टकियोस्टोमी करे, कुछ हो सकता है। तो उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर, हाँ ये आपके लिए तो पेशेंट है परंतु मेरी तो माँ है, इसलिए ना आप और भी एक बार ट्राई करो, हाँ शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने फिर से वो छेद किया, जो ट्यूब डाल दी जाती है ना, वो ट्यूब डाली, और जैसे ट्यूब डाली ना तो देखा 2 सेकंड में अंदर से कुछ निकल के डॉक्टर के कोट के खिसे में चला गया। हाँ, वो एक छोटा सा दांत का टुकड़ा था, हो सकता है कैसे भी अंदर चला गया होगा, वो बाहर निकल आया और कोट में चला गया, और बस उसी से वो 15-20 मिनट में ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि जिसमें जिस पर हमने पूरी आशाएं खो दी है वो भी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे भी किस्से हैं कि जिनको मामूली चोट लगी है, भाई डॉक्टर ने कहा है कि भी ये तो ऑर्डिनरी बात है, कुछ नहीं होना है, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है ना। तो इससे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, मेरे एक मित्र है वो लेटर हेड पे भी लिखते हैं, आई ट्रीट एंड गॉड क्योर्स। एक बहुत ही अच्छे सर्जन हैं, उन्होंने अपनी सर्जरी की किताब जब शुरू की तो उसी में लिखा है कि आई ड्रेस द वुंड्स एंड गॉड हील्स देम। तो वो कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, कोई वो कवि नहीं है कि कवि की भाषा में लिखा, परंतु उन्होंने सचमुच अनुभव किया होगा कि मैं जो ड्रेसिंग करता हूं उसी से सब पेशेंट ठीक नहीं होते, और भी कोई चीज है कि जिसके कारण उनमें हीलिंग होता है। यहां तक कि भी एस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, गॉड हील्स एंड डॉक्टर्स टेक द फीस। बुरा नहीं मानना कि डॉक्टर का भी अपना पार्ट होता है, यह नहीं कि भी डॉक्टर का पार्ट नहीं है, डॉक्टर को फीस भी लेनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए मेहनत करते हैं। यह तो सिर्फ मैंने हंसी में बताया, परंतु कहने का भाव कि भी अच्छे अच्छे लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भी कोई और चेतना है।